الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لاتے ہیں، کوئی ایسا ٹاپک لیتے ہیں جس میں ہماری بھی اصلاح ہو، ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو، اور ہماری ایک دینی زندگی میں بھی بہتری ہو اور دنیا بھی زندگی، کیونکہ دینی معاملات میں بہتری کریں گے تو دنیا کے معاملات خود بخود سنورتے رہیں گے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھر اور معاشرے میں تجسس. تجسس یعنی کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، اور بھی اس کی ہم ڈیفینیشن اور مزید اس موضوع کو کھولیں گے. لیکن یہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو لگ جائے شاید وہ فارغ ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر سارے جہاں کو ٹٹولتا پھرتا ہے اور اپنے عیوب، اپنی خامیاں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اور سارے جہاں کی وہ رپورٹ رکھنے پہ لگا ہوتا ہے. پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں رکن شورا حاجی شاہد مدنی عطاری دامت برکات مالیہ موجود ہیں، ماشاءاللہ مرحبا. راشد نور عطاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ. یہ دونوں مدنی ہیں، بہترین مبلغ ہیں، اور آج کے موضوع سے متعلق بھی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور اپنے پرسنلی تجربات اور اپنا جن کا ایکسپیرینس ہے اس پر بتائیں گے. باقی آج جو ہم نے موضوع لیا ہے، کچھ ہم نے اس کو پڑھا، دیکھا، کچھ ڈسکشن بھی کی کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ بعض اوقات کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے وہ اپنی بھی زندگی میں زہر گھول رہا ہوتا ہے. پھر اس سے اور اس کی شاخیں اور اس کے سمجھ لیں کہ اور معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جو شخص تجسس کرتا رہتا ہے، لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کو ظاہر بات ہے کہ ایسی چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ جس سے لوگوں کے عیوب ہیں، پھر دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، اس کی اتنی شاخیں نکلتی ہیں کہ بندے کی اپنی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اچھا، صرف مرد نہیں، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی. پھر خواتین اپنے شوہر کی ٹو میں لگے رہنا، ساس جو ہے اپنی بہو کی ٹو میں لگے رہنا، بہو ساس کی. اگر ایک گھر میں تین چار بھائی ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کی بچوں کی ماں ہے، وہ ایک دوسری بھابھی بھاوج کی ٹو میں لگے رہنا. اچھا، ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو سیٹھ ملازم کی، ملازم سیٹھ کی ٹو میں لگے رہنا. پھر پڑوسی، رشتہ دار، خاندان، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، ترقی کہاں سے کر رہا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ کرتی کیا ہے، یہ سب کیسے چل رہا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور آسان بن سکتی ہے اپنی سوچ اور اپنی جو ہے معاملات کو بہتر کریں، اپنی اچھی تربیت کریں، دینی تربیت کریں. بڑھتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف. رکن شورا حاجی شاہد مدنی، شاہد بھائی، تجسس، اللہ پاک کا پاک کلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں جا بجا ایسی رہنمائی جو ہے وہ فرمائی ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا بھی اچھی کر سکتے ہیں اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو تجسس جو کہ ایک معاشرے کا ایک ناسور ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ناہمواری ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا کہ ولا تجسسو، یعنی تجسس نہ کرو. اور صدر فاضل رحمۃ اللہ علیہ، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے. تو جب اللہ پاک نے لوگوں کے عیب چھپائے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہے ان کے عیب ڈھونڈنے والے، ٹو میں لگے رہنے جو ہے اس کی کوشش کرتے رہنے، اور باقی دوسروں کی جو عیب ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے سے بندے کی اپنی جو وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے. कि जब हम किसी की टो में लगे रहेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारी टो में लग जाएं, और यूं जो है वो वैसे भी जिसके बारे में पता चल जाए कि ये बड़ा तजस्सुस करता है और मनफी सोच रखने वाला है, और तो दूसरों के बारे में उसके अपने ख्यालात भी अच्छे नहीं होंगे। तो जब किसी के तजस्सुस की या किसी के ऐब ढूंढने की कोशिश की और वो ऐब हमारे सामने आ गए, और एक दिन आता है कि फिर जबान से भी वो ऐब निकल ही जाते हैं, और जब ऐब निकलेंगे तो जाहिर है फिर हमारी अपनी इज्जत खराब होगी ना। अगर हमें जो है वो किसी के ऐब मालूम नहीं होंगे तो हमारे लिए यूं आफियत है कि हमें पता ही नहीं है
सही
किसी के मनफी पॉइंट्स। अगर हम पता होगा तो कहीं ना कहीं गुस्से में या फिर जो है वो बज़ाहिर राजदारी करते हुए जिससे हमारी दोस्ती है उसके सामने हम जिक्र कर देंगे, और जिसे हम अपना दोस्त समझ रहे हैं कि मैं जो है वो इसको उसके राज बता रहा हूँ, बुराइयां बता रहा हूँ, तो यही जिसे हम बज़ाहिर अपना दोस्त समझ रहे हैं ये उसको बता देगा।
सही।
तो यूं जो है वो चुगली का सिलसिला भी हो जाएगा और यूं आपस में जो है वो नफरतें पैदा हो जाएंगी। तो इसीलिए तो कुरान मजीद में जो है वो हमें तजस्सुस करने से, टो में लगे रहने से, लोगों के ऐब तलाश करने से मना किया गया, और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है हमें तजस्सुस करने से मना किया है। बड़ी जामे हदीस पाक है, फरमाया गुमान से बचो कि गुमान बड़ी झूठी बात है, और मुसलमानों की ऐब जोई ना करो, इनके साथ हिस्सो हसद बुग्स बेमुरवती ना करो, और ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ जैसा तुम्हें हुक्म दिया गया। मुसलमान मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म ना करे, उसको रुसवा ना करे, उसकी तहकीर ना करे। तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, और यहाँ के लफ्ज से प्यारे आका अली सलातो सलाम ने अपने सीने की जानिब इशारा फरमाया। आदमी के लिए ये बुराई बहुत है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर देखे। हर मुसलमान मुसलमान पर हराम है, उसका खून भी, उसकी आबरू भी, उसका माल भी। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और सूरतों और अमलों पर नज़र नहीं फरमाता, लेकिन तुम्हारे दिलों पर नज़र फरमाता है। तो कितनी जामे हदीसे पाक है जिसके अंदर जो है वो पूरी ज़िंदगी गुजारने का जो है वो तफसील के साथ जो है वो हुक्म इरशाद फरमा दिया गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और तकवा क्या है। वाकई जो है वो अल्लाह पाक का खौफ जिसे नसीब हो जाए, तकवा नसीब हो जाए, तो फिर वो अपने ऐब दुरुस्त करने की कोशिश में लगा रहता है, ना कि जो है वो दूसरों के ऐब ढूंढे, और फिर जो है वो जब ढूंढेगा तो जैसे मैंने अर्ज किया फिर एक दफा बयान भी करेगा, बयान करेगा तो फिर अपने आप को जो है वो आजमाइश में मुबतला कर देगा।
क्या बात। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, लोगों की खुफिया बातें और ऐब जानने की कोशिश करना तजस्सुस कहलाता है। तो अल्लाह पाक ने जिसके मामलात को पोशीदा रखा, रुकन शुरा शायद मदनी भाई ने फरमाया ना कि वो जाहिर नहीं है, छुपे हुए मामलात हैं, लेकिन ऐसी क्या बीमारी है, ऐसा क्या मर्ज है कि लोगों की खुफिया बातें मालूम करना, फिर खुद नहीं मालूम करते, लोगों से रिपोर्ट लेते हैं कि ज़रा फलां की रिपोर्ट तो लेकर आओ, फलां को तो चेक करके आओ। हमारी ड्यूटी लगाई किसने? ऐसा तो नहीं कि नफ्स और शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया और हमें ऐसे काम में लगा दिया जो हमारा काम नहीं था करने का। तो हम अपनी इस आदत, अपनी हर आदत पे गौर करें और उसमें देखें कि हमारे अंदर तो ये आदत नहीं कि कौन क्या कर रहा है। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। बढ़ते हैं अपने दूसरे मुबल्लिग राशिद नूर मदनी भाई की तरफ। राशिद भाई, तजस्सुस के बारे में क्या फरमाएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजस्सुस की जो तारीफ बयान फरमाई गई कि लोगों की खुफिया बातें और ऐब जानने की तलाश में लगे रहना।
सही।
खुफिया बातें इसीलिए खुफिया होती हैं कि खुफिया ही रहें।
क्या बात है, क्या बात है।
और ऐब ढूंढने की बजाय अगर अच्छाइयां ढूंढने की बंदा कोशिश करे तो मोहब्बतों में भी इजाफा हो,
माशा,
बदगुमानियां भी खत्म हो, गलत फहमियां भी खत्म हो, और एहतराम मुस्लिम का जज्बा भी पैदा हो। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद बुरहानी रशीद में अपने बंदों की मुख्तलिफ अंदाज में तरबियत फरमाई। मुआशरे के इतबार से जो तरबियत फरमाई गई उसमें से एक ये भी फरमाया गया, वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्म, और उस बात के पीछे ना पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं। इन समा वल बसौरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला, बेशक कान और आंख और दिल इन सब से सवाल होना है। इस आयत की तफसीर में दो बातें बयान फरमाई गई हैं। एक तो यह है कि इससे मुराद है झूठी गवाही, कि झूठी गवाही ना दो और इल्जाम तराशी किसी पर ना करो, किसी पर झूठा इल्जाम ना लगाओ। लेकिन अगर उमूमी तौर पर इस आयत के तर्जमे पर गौर करें तो उस बात के पीछे पड़ना जिसका हमें इल्म ही नहीं, ये एक ऐसी चीज है कि खुद अपने आप को रुसवाई पर, जिल्लत पर, शर्मिंदगी और पशेमानी पर पेश करना है। ऐसी बात करना कि जिसके बारे में कन्फर्म हमें मालूमात नहीं और उसको आगे बयान कर देना, सुनी सुनाई बातों को आगे बयान कर देना, यह इंसान के वकार को, इज्जत को दागदार चीज कर देती है। अका करीम अलैहिस्सलाम ने झूठे बंदे की एक निशानी यह बयान फरमाई, फरमाया कि कफा बिल मर इकदिबन अन युहदिस बिकुल्ली मा समिया, बंदे के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफी है कि सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। तजस्सुस रखने वाला बंदा वो यही कर रहा होता है, वो किसी की बात पर एतिमाद करके किसी का गुमान दिल में पाल रहा होता है। और तजस्सुस बुरा ही इसलिए है कि आप दूसरों के ऐब ढूंढ रहे हैं। अगर आप दूसरों की अच्छाइयां देखें और अच्छाइयों के लिए आप कोशिश करते हैं तो यकीनन इससे मोहब्बतें पैदा होती
हैं।
अच्छा, ये तजस्सुस ये है बातनी मरस, बीमारी है।
सही।
इसके दिल में पैदा होने के मुख्तलिफ असबाब हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। उनमें से एक ये होता है कि इंसान की आदत के अंदर ये चीज तजस्सुस वाली आ जाती है, यानी फितरी तौर पर उसके अंदर एक होता है कि वो तजस्सुस में पड़ता है, टो में पड़ता है, फुला बंदे ने यूं किया, ऐसा क्यों किया। अच्छा, वो पैसा उसके पास आ रहा है, कहां से आ रहा है, गाड़ी कहां से आ गई, भाई कल तक तो ये गरीब था, आज ये इतना खुशहाल कैसे हो गया। अब ये जो चीज है ना, ये चीज क्या करेगी कि बंदों के ऐबों की तरफ, टो में तजस्सुस की तरफ लेकर चली जाएगी। तो इसके लिए बंदा गौर करे कि उसे कल भी अल्लाह पाक ने इस हाल में रखा था और आज भी अल्लाह पाक ने ही नवाजा है। अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे कुछ देर के लिए ना दे, उसको आजमाइश में रखे। फिर दूसरी बात यह है कि तजस्सुस में मुबतला होना, ये जो तजस्सुसाना एक तबीयत है ना, ये बंदे की अपनी एक फितरत को भी अयां करती है, चीज जाहिर करती है। क्योंकि इंसान किसी के बारे में जैसा सोच रहा होता है, जैसी टो में लगता है, ये उसके अपने अंदर की खबासत कह लें या अपने अंदर का एक मर्ज और बीमारी है। हदीस पाक में जैसे बयान किया गया कि अल मुमिनु मिरातुल मुमिन, कमा कौल अली सलाम के मुसलमान मुसलमान का आईना है। आप दूसरों के बारे में जैसा सोच रहे होते हैं तो दर हकीकत आप आईने में अपना अक्स देख रहे होते हैं। अब देखिए, जो बंदा पॉजिटिव सोच वाला होता है ना, वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है।
बिल्कुल।
जिसके अंदर अपनी कुछ खराबी हो ना, अपनी कमजोरी हो, तो उसे यूं लगता है कि हर बंदा शायद मेरी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता, सोच का फर्क होता है। दूसरी वजह यह भी होती है, जिन लोगों में बंदा उठता बैठता है ना, वहां पर गीबतें आम होती हैं, बदगुमानी आम होती हैं, लोगों के बारे में गलत कमेंट्स हो रहे होते हैं, तो उस माहौल के अंदर रहकर उस गैदरिंग का असर इंसान पर भी पड़ता है। तो कहा जाता ना, अस्सोहबतु मुअस्सिरतुन, सोहबत असर रखती है। तो जिन लोगों में उठता बैठता है तो वो चीजें फिर तबीयत का हिस्सा बन जाती हैं। पहले तो इंसान अच्छा नहीं समझता, आहिस्ता आहिस्ता कहता नहीं नहीं हाँ ठीक है, अब दूसरों की गलत बातें सुन सुनकर गलत चीजें आ जाती हैं। और अगर इसी तरह अच्छे लोगों में बैठे, दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अगर उठना बैठना हो, नेक लोगों में बैठे, मदनी मुजाकरे में अगर शिरकत करे, तो यहां पर क्या होगा, सबसे अच्छी चीज, जो सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं, वो होता है कि इंसान की तबीयत के अंदर निखार आता है।
हाँ।
इंसान के बातिन की इस्लाह होती है, इंसान के अंदर अमली एतबार से फायदा होता है। और फिर ये होता है कि अल्लाह वालों की सोबत में, नेक लोगों की सोबत में आने के बाद मुआशरे का बेहतरीन वो फर्द एक बनकर निकलता है और इसका मुआशरे पर इंपैक्ट भी पड़ता है।
क्या बात है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, एक तो ये कि किसी की टोह में लगना, किसी के पीछे लगना, खुफिया बातें मालूम करना, रुकने शुरा शायद मदनी भाई से मैं ये मालूम करूँगा ये कि एक तो टोह में लगता है बंदा और एक अज खुद कोई बात पता लग जाए, ये तो मुसलमान की तो इज्जत का वैसे तहफ़ करना है हमने, और कोई बात पता लग जाए उसको भी छुपाने का है, ना कि किसी के पीछे लग कर, जासूसी करके, लोगों को मकसद शामिल करके, किसी के ज़रिए मालूम करके, कोई ज़राए इख्तियार करके, और अजीब अजीब ना जाने क्या हो रहा है। शायद मदनी भाई यहाँ तो हमारे मकसद इस्लाम में यही तरबियत है कि मुसलमानों की इज्जत का तहफ़, तो एक तो तजस्सुस से टोह में लगना, एक अज खुद कोई बातें मालूम हो जाए, पर्दा पोशी, राजदारी, मुसलमानों के मामला पर पर्दा रखना, क्या फरमाएंगे।
लेकिन पहला तो यही है कि हमें खुद ब खुद जो है वो किसी जरिए से किसी की खुफिया बुराई का पता चल गया, इसमें तयस्सुस नहीं है।
सही।
तो अब यानी अगर कोई ऐसा किसी किसी की बुराई मालूम होती है तो अब हुक्म है कि इसे छुपाया जाए, किए जाए कि एक कदम और उठा के हम तयस्सुस में लग जाएं, उसकी बुराइयां ढूंढना शुरू कर दें।
अब खुद पता लग गया तो छुपाने का हुक्म है।
जी जी,
पता तो डाला जाए।
जी, तो इससे अगला स्टेप तो ये बनता है ना कि हम खुद तलाश करते रहें कि किसके अंदर कौन सी बुराई है। अच्छा, किसी की बुराइयां की जो टो में लगे रहना तयस्सुस करने में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की बुराइयां मालूम होंगी तो फिर हम अपने अयूब की तरफ जो है वो नजर नहीं करेंगे।
सही।
और अगर कभी नजर हो भी जाएगी ना तो फिर शैतान एक और वसवसा डालेगा कि तू बुरा थोड़ा है, फलां भी बुरा है, फलां भी बुरा है। तो यूं यानी ज्यादा लोगों की बुराइयां मालूम होने की वजह से फिर वो अपनी इस्लाह की तरफ नहीं आएगा। अच्छा, इसके बरक्स अगर हमें लोगों की खूबियां मालूम होंगी ना तो फिर अगर वो हमारे अंदर खराबी है तो हमें अब पता चल गया कि मेरे अंदर ये खराबी है तो फिर नफ्स मलामत करेगा कि देखो वो भी इतना अच्छा है, वो भी इतना अच्छा है, वो भी इतना अच्छा है, तू इतना बुरा है। तो अब अपनी वो बुराई को दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे लिए जो है वो इस्लाह का बाइस बन जाएगा, आखिरत में पकड़ जो है वो उससे हम बचते चले जाएंगे। तो यूं अपनी बुराइयां जब हम कम करते चले जाएंगे तो अल्लाह पाक की रिजा की जानिब जो है वो जन्नत की जानिब हमारा सिलसिला हमारा हम उस राह पर जो है वो चलते चले जाएंगे। तो लोगों की बुराइयां ना मालूम होना ये हमारे अपने लिए भी बेहतर है। और जैसे पहले मैंने एक जो है वो मसला बयान किया कि अगर हमें मालूम होगा किसी की बुराई मालूम होगी तो फिर हम कहीं ना कहीं बयान भी कर डालेंगे और फिर जो है गीबत का इर्तिकाब कर देंगे। और गीबत जो है एक ऐसा मर्ज है कि जिसकी वजह से जो है वो लड़ाई झगड़े और फिर कत्लो गारत और जो है वो मुआशरे के अंदर ना हमवारी जो हो रही है और मसाइल खड़े हो रहे हैं, ये गीबत की वजह से हो रहे हैं, चुगलियों की वजह से हो रहे हैं। तो तयस्सुस की वजह से ही जो है फिर ये चुगली और ये जो है वो चुगलखोरी और गीबत वगैरह का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है। तो यूं भी हमें जो है वो लोगों के तयस्सुस में लोगों के ऐब ढूंढने में नहीं पड़ना चाहिए। और इसके असबाब जैसे कि इन्होंने भी बयान किए हैं, राशिद नूर भाई ने भी, और एक सबब ये भी है कि जब किसी हमारे दिल में किसी का कोई कीना बैठ जाता है, छुपी दुश्मनी होती है, तो फिर भी जो है वो हम जब क्योंकि उससे वैसे ही हम नाराज हैं तो अब जो है वो तजस्सुस की तरफ ये चीज भी रागिब करती है कि क्योंकि हमारे दिल में उसकी दुश्मनी बैठी हुई है तो वो उसे हम अपना दुश्मन समझते हैं तो अब उसकी जो है वो बुराई तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज हमें गौर करना चाहिए कि जब हमारे जहन में ये बात आए कि फलां शख्स का ऐब मुझे ढूंढना चाहिए तो हम अपने दिल में झांकें कहीं मेरे दिल में उसके बारे में कीना तो नहीं है, छुपी हुई दुश्मनी तो नहीं है।
क्या बात।
और अगर जो है वो हम गौर करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज निकल आए कि वाकई ये जो तुझे जो है वो एक रगबत मिल रही है ना कि उसके ऐब तलाश करो तो तुम उसका कीना दूर करने की कोशिश करो।
क्या बात।
तो जब बंदा उसका कीना दुश्मनी दूर करने की कोशिश करेगा, उसकी ये कीना दूर करने की एक सूरत ये भी है कि दुआ भी करें, या अल्लाह मेरे दिल में फलां के बारे में जो मैल आ गया है उसको दूर फरमा दे, और फिर जो है वो उसे कोई तोहफा दे दे, उसके लिए दुआ करे और तोहफा दे दे। तो इससे भी जो है जब मिले, मुलाकात हो तो पुरतबाग तरीके से मुलाकात करे, तो ये सारी जो चीजें हैं ये कीने को दूर करेंगी। जब कीना दूर होगा तो फिर तयस्सुस वाले मर्द से भी जो है वो बचने की सूरत हो जाएगी।
क्या बात। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अपनी कैफियत पर गौर करना चाहिए। मुझे जैसे हमारे रुकन शुरा भी फरमा रहे थे, राशिद नूर भाई भी फरमा रहे थे, स्टूडेंट लाइफ का एक वाकया याद आया कि कुछ स्टूडेंट्स थे तो एक तालिब इल्म हर दफ़ा क्लास में टॉप करे, फर्स्ट पोजीशन आए, चाहे दूसरे पढ़ाई में इतने तेज़ थे नहीं, अब उनका वही हसद या दिल में छुपी हुई दुश्मनी कीना, अब उनका और कोई काम नहीं था। जैसे शायद भाई ने फरमाया ना, अब अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में लग जाते हैं, ख़ुद की भी एफिशिएंसी मुतासिर होती है। अब उसमें लगे करता क्या है, पढ़ता कब है, कहाँ जाता है, कब उठता है, क्या करता है। अच्छा, वो इस तरह उसमें आगे बढ़े कि अब अपनी पढ़ाई छोड़कर उसको इंगेज करना, उसको खेल कूद में लेके जाना, तफरी की तरफ लेके जाना, उसको उल्टे सीधे कामों में लगाना ही है। लेकिन वो भी मुस्तकिल मिजाज था, लगा रहा ही है। तो किसी के मामलात में, किसी की कामयाबी में, किसी के आगे बढ़ने में हमें तकलीफ़ क्या है। अच्छा, जायज़ है या अल्लाह ना करे नाजायज़ है, जो भी उसने ज़राए इख्तियार किए हैं वो अपने मामलात का खुद जवाब दे ना। हमने क्या सारे लोगों का ठेका लिया हुआ है, जैसे शायद मदनी भाई ने भी फरमाया, मजीद भी इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ये कि बोग्स कीना और ज़ाती दुश्मनी, इसके बहुत सारे मामलात हैं। राशिद नूर भाई, जब ये बातनी अमराज, जैसे आपने फरमाया था बातनी अमराज, तो लगता है ऐसा है कि अंदर का सारा कनेक्शन, जैसे इंसान के बॉडी पार्ट्स भी आपस में मिले हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन होता है, तो इसी तरह लगता है कि बातनी अमराज का भी कनेक्शन तो होता ही होता है। जैसे किसी किताब में लिखा ना कि इसका सबब बोग्स कीना भी है, हसद भी है, फिर चुगलखोरी भी करता है बंदा, यूँ बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो ये कनेक्शन कैसा है, ये सेट कैसे होगा कनेक्शन? ये
वाकई ऐसा ही होता है। देखें, जिस तरह एक नेकी जब बंदा कर रहा होता है ना, उस नेकी के इम्पैक्ट पड़ते हैं दूसरे अमाल पर, तो नतीजा ये होता है कि बंदा नेक से नेकतर होता चला जाता है। इसी तरह गुनाहों का मामला होता है, बजाहिर एक गुनाह होता है लेकिन उस एक गुनाह की जड़ें बहुत हद तक फैली हुई होती हैं, उन्हीं में से एक तजस्सुस है। अब तजस्सुस ऐसा नहीं होता कि बंदा वैसे ही किसी की टो में लग जाए, वैसे ही तजस्सुस करना शुरू कर दे, इसके पीछे असल में कुछ और चीजें होती हैं। जैसे रुकने शुरा ने चंद एक चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई, उनमें से एक इन्होंने जैसे फरमाया बुग्ज़ो कीना, दिल के अंदर किसी की अदावत है, किसी की दुश्मनी है, और एक वजह होती है हसद। हसद क्या है कि किसी के बारे में ये आप सोचते हैं कि इसके पास जो नेमत है ना, ये खत्म होकर ये नेमत मुझे मिल जाए।
सही,
जिस तरह आपने एक मिसाल प्रैक्टिकली तौर पर बयान फरमाई कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर होता है अमूमन कि कोई एक स्टूडेंट है वो टॉप करता है, वो पोजीशन लेता है, तो दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वो हसद का शिकार हो जाते हैं, ये क्यों, हम क्यों नहीं, उसके लिए फिर बेचारे बहुत सारी चीजों में लगते हैं। उन्हीं में से एक क्या होता है कि वो टो में लगते हैं, तजस्सुस के अंदर मुबतला होते हैं, भी ये कैसे आता है, पोजीशन कैसे आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चेकिंग करने वाला है, चेकर है, उससे कोई इसकी बातचीत हो, ऐसा तो नहीं कि ये रिश्वत का काम करने, रिश्वत देता हो, ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है, क्या चीज हो सकती है, तो इस तरह फिर वो तजस्सुस के अंदर मुबतला होते हैं। अच्छा, और क्योंकि जो बंदा नेमत वाला होता है ना, तो एक उसूल ये है कि कुल्लु ज़ी निअमतिन महसूदुन, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। नेमतें अल्लाह पाक जब किसी को देता है तो दूसरों के लिए तो हुक्म ये है कि वो अल्लाह पाक से दुआ करें उसके लिए और रश कर सकते हैं कि या अल्लाह जिस तरह तूने इसको नवाजा है हमें भी नवाज, ये तो एक अच्छी चीज है। लेकिन हसद ये बुरी चीज है कि ये गुनाहों का बाजार गर्म करती है और नेकियों को खा जाती है। अच्छा, कनेक्शन जिस तरह आपने कहा ना, तो अब एक तो ये कनेक्शन हसद से हुआ, अब जब आपको किसी से हसद होगा, किसी की टो में लगेंगे, तो कुछ बातें पता चलेंगी, तो फिर गीबतों का सिलसिला होगा।
सही,
उसकी पीठ पीछे बुराइयां होंगी। अच्छा, इसी तरह जब आप किसी से तो किसी की तजस्सुस में पड़ेंगे, तो आपको लाजमी तौर पर उसकी बदगुमानी उसके बारे में करना पड़ेगी, बुरा गुमान रखना पड़ेगा, तभी उसके टो में लगे। अगर अच्छा गुमान होता तो किसी के ऐबों को क्यों ढूंढते। किसी ने बड़ा खूबसूरत वो शेर कहा कि ऐबों को ढूंढती है फकत ऐब जू की नजर।
क्या बात,
जो अहले हुनर हैं वो तो कमाल देखते हैं।
क्या बात है,
तो बंदा जिस तबीयत का होता है ना, वही चीजें वो तलाश कर रहा होता है मुआशरे के अंदर। तो अच्छा, इसी तरह आपने जो रुकने शूरा से भी जिस तरह सवाल किया, इन्होंने इस पर बयान फरमाया कि अब किसी को बातें पता चलती हैं। देखिए, पता चलने के दो ही तरीके होते हैं, या तो किसी के ऐब, किसी की चीजें खुद आप पर जाहिर हो गई, या कोई दूसरा आपको बता रहा है। दोनों सूरतों में देखिए हुक्म क्या है कि आप उसकी पर्दापोशी करें, यह सोचकर कि जिसके ऐब को रब ने छुपाया है, मैं उसके ऐबों को जाहिर क्यों करूं।
क्या बात,
आज अगर मैं किसी के ऐबों को जाहिर करूंगा, किसी की पर्दापोशी नहीं करूंगा, तो मुझे डरना चाहिए कि वो रब अज़्ज़ वजल मेरे ऐब भी लोगों के सामने जाहिर कर देगा। आज अगर किसी के ऐबों को छुपाऊंगा, अल्लाह ने कितने मेरे ऐबों को छुपा कर रखा हुआ है। हम जो तन्हाई के अंदर लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो मुआशरे में भी जिनको अच्छा नहीं समझा जाता, अगर ये लोगों के सामने जाहिर हो जाए तो यकीनन बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, और फिर क्यामत की जिल्लत, रुसवाई, शर्मिंदगी, पशेमानी को बंदा याद करे कि वहां अगर मेरे ऐब जाहिर कर दिए गए मेरे असातिज़ा के सामने, मेरे बीवी बच्चों के सामने, मेरे माँ बाप के सामने, मेरे टीचर के सामने, तो वहां पर मेरा हाल क्या होगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐब पोशी करे। अच्छा, एक और चीज ये होती है कि अब किसी की बातें पता चली, आपसे कोई मशवरा करता है किसी के बारे में, मिसाल तौर पर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है किसी लड़के से, तो अब वो उसके बारे में आपसे मशवरा करता है, तो अब आप उसकी वो बातें सिर्फ बयान कर सकते हैं कि जिससे इसे नुकसान ना हो,
सही,
कि इसकी शादी जो है, अब ये अमानतन अब बात करते हैं, यहां भी मकसद ये ना हो कि उसके ऐबों को खोल खोल उसके सामने बयान करना। फॉर एग्जांपल अब कोई कहता कि मैं फुलां लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, तो मुझे डाउट ये है कि कहीं ये रिश्वत का या सूद का या इस तरह का कोई इसका हराम आमदनी का जरिया तो नहीं। अब आपको पता है कि वाकयातन ये बंदा सूद लेता है या रिश्वत लेता है, इस तरह के काम करता है, अब आप इतनी बात उसको बता सकते हैं कि हाँ वाकई ये मेरे इल्म में बात है, तो आप अपनी बच्ची का रिश्ता यहां ना करें, ये इस तरह हलाल कमाने वाला बंदा नहीं है, तो इतनी बात बताने में कोई हर्ज वाली बात नहीं होती। और इससे मकसद क्या है, एक मुसलमान को नुकसान से बचाना मकसद है।
और ठीक मशवरा,
और ठीक मशवरा आप दे रहे हैं यहां पर ये बयान करना, नहीं नहीं इसके घर के अंदर भी ऐसा मामला है, इसकी माजल्ला बहनें भी ऐसी हैं, भाई भी ऐसे हैं, वालिद भी ऐसे हैं, ये जो एक पंडोरा बॉक्स खोल लिया जाता है ना, ये बिल्कुल एक गलत बात होती है।
सही फरमाया। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, तजस्सुस, किसी की टोह में लगे रहना, जासूसी करना, उमूमन जो है वो एक साथ लोग जो काम करते हैं एक ही ऑफिस में एक ही जगह पर, तो आपस में हसद कीना या क्या कहेंगे इसको कि एक दूसरे के टों में लगे होते हैं, सेठ साहब है, बॉस है, उसकी नज़र में अपने नंबर बनाने के लिए दूसरे के नेगेटिव पहलू तलाश करते हैं, मनफी बातें तलाश करते हैं, फिर आपके वो डोमेन में नहीं आता, वो आपके अंडर में नहीं है, लेकिन वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, मोबाइल पे बात करता है, क्या कर रहा है, किससे कर रहा है, सेठ साहब नहीं होते हैं तो वो उठ के चला गया, या तो इस कदर वो आपस में हसद कीना क्या क्या होता है कि वो बिल्कुल इसकी बातें कर जमा कर करके आगे पहुँचा रहे होते हैं जो उसके जिम्मे नहीं है, उसको उस काम पर नहीं लगाया गया, और कहीं इतनी फ्रेंडशिप होती है कि सारी खामियाँ छुपा कर वो हमारे अंडर में है और हमने उसको चेक करना था, लेकिन वो मेरा दोस्त है, ख़ास है मेरा, तो उसके इस तरह के मामलों पर पड़ता, ये नहीं, जहाँ जो हमने करना है वही करना है, अगर जो चीज़ हमारे ज़िम्मे है तो उसका हक अदा करना है, और जो चीज़ हमारे ज़िम्मे नहीं उसमें खाम खा क्यों टेंशन में जाकर पंचायत में जाकर उसकी टोह में लगकर अपनी दुनिया और आखिरत दाव पे लगाते हैं, फिर दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, इसमें नाराज़गियाँ हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं, कई ख़ानदान की महल्ले की जो है वो ख़वातीन, अब शादी हुई, औलाद का सिलसिला साल दो साल गुजर गए नहीं हुआ, अब ख़ानदान की या महल्ले वाली या कुछ जानने वाली बाज़ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें खाम खा पंचायत होती है कि भाई क्या है, ये कराएं वो कराएं, मुफ्त के मशवरे, अल्लाह जब चाहेगा हो जाएगा ये, हाँ अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज़ है, कोई आप अच्छा मशवरा देना चाहती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन टो में लगना, बाज़ वक़्त इस तरह के मामलात होते हैं कि फिर वो लोगों के घर के ज़ाती मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए। मज़ीद भी हम इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे, अपने मुबल्लिगीन से पूछेंगे, स्पेशली रुकने शुरा शाहिद मदनी भाई से भी, राशिद नूर भाई भी इसमें कमेंट्स दें कि एक तो वालिदैन औलाद की तरबियत की नियत से क्या है, औलाद पे भी तो नज़र रखते हैं कि किसकी कॉल आ रही है, किसकी जा रही है, क्या है ये, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, ख़वातीन औरतें उमूमन औरतें या मर्द शकी मिजाज तो होते ही हैं, ये किससे बात कर रहे हैं, क्या है, तो मोबाइल चेक करते हैं, आना जाना ये वो, तो इसकी कहाँ तक इजाज़त है, तो रुकने शुरा से भी पूछते हैं शायद मदनी भाई, कोई तजस्सुस से मुराद यानी जासूसी या टो में लगना, तो वालिदैन के लिए क्या फरमाएंगे कि वो अपने बच्चों को किस हद तक कर सकते हैं, और अगर पहले ख़वातीन, क्योंकि इस्लामी बहनों का शोबा आपके पास है, तो क्या फरमाएंगे ख़वातीन जो अपने शोहर की टो में लगी रहें, ये कब जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, फिर उनका मोबाइल चेक करना, क्या करना चाहिए।
देखिए, पहले तो एक अहम बात यह है कि जो घर चलता है वो एक दूसरे पर एतिमाद करने से चलता है।
सही।
और अगर हम मुआशरे पर नज़र दौड़ाएं तो जो घर टूटते हैं उनकी टूटने की वजूहात में से एक अहम वजह ये तजस्सुस भी है, टो में लगे रहना भी है। तो लिहाजा चाहिए यही जानबैन को, यानी शोहर को बीवी के मामले में और बीवी को शोहर के मामले में, एक दूसरे पर एतिमाद करें।
सही।
और जो है वैसे ही जो है वो इन टो में लगे रहना, इससे मोहब्बत भी कम होती है, और फोन देखते रहेंगे तो फोन क्या, यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई खराब है भी, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो फोन में वो चीजें थोड़ी रखेगा कि कोई पता है कि घर जाके ये चेक होगा,
प्रूफ नहीं रखेगा,
आप तो खत्म ही कर देगा,
कोई सबूत नहीं, सारे सबूत गायब।
ऐसी जो है वो वसवसे पालने की क्या जरूरत है। अल्लाह पाक से दुआ भी करें एक दूसरे के बारे में, अगर कोई ऐसी बात कोई करीना जो है वो नजर भी आता है। अच्छा, बाज़ूकात ये होता है कि बंदा अपने जहन में ऐसी चीज बिठा लेता है, थोड़ी थोड़ी बात बिठाता रहता है फिर टो में लगना शुरू कर देता है, फिर इसे एतिमाद भी टूटता है। वो फिर बोल देता है, शोहर बीवी को बोल देता है कि मुझ पर तुझे एतिमाद नहीं है, और जो है वो बीवी शोहर को बोल देती है मुझ पर एतिमाद नहीं है। तो फिर जब ऐसी बातें आती फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, यानी क्या बेस क्या बनी, एक दूसरे पर एतिमाद ना करना। तो जब अल्लाह पाक ने जो है वो आपका ये रिश्ता जो है वो बनाया है, उसके कर्म से ही बना है, तो अब एक दूसरे पर एतिमाद करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और रब ताला जो है वो मजीद मोहब्बतों में इजाफा कर देगा। तो वाकई आपने बिल्कुल जो है वो तवज्जो दिलाई है कि हमारी इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि वो इन अहकामात को पेश नज़र रखें। अल्लाह पाक ने जो ये हमें अहकामात अता फरमाए, हुक्म अता फरमाए, ये हमारी भलाई के लिए फरमाए। अब घर का टूट जाना जो है ये कितनी मुआशरे के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स लेकर आता है, मसाइल लेकर आता है। जब एक घर टूट जाता है तो फिर बच्चे जो हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, वो इन परेशान हो जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो ये यानी देखें, घर के टूटने की बजाय तो एक छोटी सी वजह है, एक दूसरे पर एतिमाद ना करना और टो में लगे रहना, और शैतान भी उस वक्त खेल जाता है, छोटी सी बात को पहाड़ बना देता है। तो ये तो है ना कि बात कोई बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती हैं और उसको जो है वो हम पहाड़ बना देते हैं। और हो सकता है कि यानी बुनियादी तौर पर ऐसा ना हो, यानी जो टो में लगे हुए हैं हमें कोई ऐसी बात पता चली तो हकीकत में ऐसा नहीं था। होता है ऐसा बाजूकात कि हम कुछ समझ रहे होते हैं और हकीकत कुछ होती है।
जाहिर ये चीज भी होती है ना कि एक तो चले इस्लामी बहनों के लिए ये है कि शोहरों की टो में ना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो मामला होता है ना कि इस्लामी भाई भी शोहर भी ऐसे कामों से बचें कि जिसकी वजह से उनके दिल में शक पैदा हो। अब अपनी बीवी के सामने, वाइफ के सामने ही अब अगर वो इस तरह की वीडियोस देखे या फिर बात इस तरह मशकूखाना अंदाज में बातचीत करे या फिर इसी तरह उसको चाहे छेड़ने के लिए ही गैर औरतों का, ना महरम औरतों का जिक्र करेगा, तो लाजमी सी बात है कि औरत है, वो बीवी है, उसके दिल में पैदा होंगी चीजें कि पता नहीं कौन है आगे, तो वो भी कोई ऐसी चीजें ना करे जिसके दिल में, उसके दिल में शक पैदा हो, ना बीवी इस तरह करे ना शोहर इस तरह करे।
बड़ी प्यारी बात फरमाई, इसी से मेरे जहन में आया कि बच्चे भी बाज़ुकात
जी
कोई चीज़ बिलफर्ज मोबाइल है, आजकल तो मोबाइल इतना आम हो गया, हालांकि इसकी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन वालिद साहब आए, वालदा एकदम घबरा के मोबाइल बंद किया, अच्छा कोई नाजायज चीज ना देख रहा हो, कोई गलत काम भी ना हो, लेकिन वाकई उसका अंदाज। इसी तरह शोहर घर में आया तो बीवी ने घबरा के फौरन फोन बंद किया, या वो शोहर से अलग हट के दूसरे कमरे में अगर बातें कर रही हैं, भले अपनी वालदा से, बहन से कर रही हैं, तो वाकई इंसान को खुद भी ऐसे कामों से बचना चाहिए कि जिसको किसी के जहन में बदगुमानी आए, कोई मकसद तोहमत लगाए या उंगली उठाए ये। और जैसे शायद मैंने फरमाया एतमाद, बहुत ज़बरदस्त बात फरमाई, ये एतमाद का रिश्ता यही मियाँ बीवी का, वालिदैन का, बच्चों के साथ, सास बहू का, वाकई एतमाद का जहाँ रिश्ता होता है वहाँ माशाल्लाह घर संवर जाता है, और जहाँ एतमाद ख़त्म तो वहाँ शकूक व शुबात, और ये जो तजस्सुस में लगते हैं इनमें कैटेगरी वो भी है जो शक्की मिजाज होते हैं। शक्की मिजाज लोग, अच्छा सेठ शक्की मिजाज है, यार ये मुलाजिम पैसे तो नहीं मारता, अच्छा जो शक्की मिजाज लोग होते हैं ना, जब ये बार बार अपने शक का इजहार नेगेटिव अंदाज में करते हैं, मनफी सोच के भी लोग होते हैं, तो वो ना करने वाला भी बाज़ औक़ात नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर वो कर बैठता है।
पहले नहीं किया था, अब करूंगा।
हाँ बोला, मुझे जब ऐसा समझ ही लिया कि मैं चोर हूँ, मैं गलत हूँ, तो अब मैं करके दिखाऊंगा। ये उनको भी नहीं करना चाहिए। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अच्छे हैं तो अच्छे बन के रहें, ये खाली अच्छे नज़र आते हों ये नहीं, बल्कि हर मामले में अपने आप को अच्छा बनाना है। और इस तरह के जो ज़ाहिरी अमराज हैं गुनाहों वाले, बातनी अमराज हैं गुनाहों वाले, इनसे बचना है ना, अपने आप को बचाना है। जैसे हमारे शाहिद मदनी भाई ने भी और हमारे राशिद नूर मदनी भाई ने जो शेर पढ़ा था ना अपने, वो ऐबों को ढूंढती है फ़कत ऐब जू की नज़र, मेरे पास इमाम गजाली का एक फरमान लिखा है, वो आपके उस शेर से मुताबिकत करता है कि मोमिन हमेशा अपने दोस्त की खूबियों को सामने रखता है ताकि इसके दिल में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम पैदा हो, जबकि मुनाफिक हमेशा बुराइयाँ और अयूब देखता है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी किसी के ऐब देखने की, किसी की बुराइयां, एक तो वैसे नजर आए तो छुपाना है, हम तो टो में लगे हुए हैं, छुप छुप कर शायद भाई, राशिद भाई, लोगों की बातें सुनना, दरवाजे पर कान लगाना, और एक अजीब सी एक तबीयत,
अच्छा, खास तौर पर वो सास बहू जिस घर में हो या देवर और नंदे भाव जिस तरह हो ना, तो वहां पर उमूमन ये चीज पैदा हो जाती है कि वो एक तो आपने जिस तरह तवज्जो दिलाई के बात कर रहे हैं, बीवी बात करी, अचानक से शोहर आ गया तो एकदम से बंद कर दिया, या सास साहिबा आ गई तो फौरन उसने बंद कर दिया, तो इससे होता कि पता नहीं किससे बात हो रही थी। और एक ये चीज भी घर को खराब करती है कि घर में मिसाल तौर पर بہو ہے وہ بات کر رہی ہیں اپنی والدہ سے یا کسی سے، اب ظاہری بات ہے کہ عورت ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے خاص طور پر والدہ سے اٹیچ ہوتی ہے، تو ان سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو اب اگر ساس ہیں یا نند ہیں وہ چھپ کر باتیں سن رہے ہیں ان کی، اور پھر یہی کوئی ایک بات کو دو باتیں بنا کر اس کے شوہر کو بات بتانا، تو اس سے کیا ہوگا؟ دل میں ایک بدگمانی پیدا ہوگی، ایک شک کی فضا قائم ہوگی، گھر کے اندر جھگڑوں کا ایک ماحول پیدا ہوگا۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ کئی جو ماشاءاللہ اسلامی بہنیں جو بڑی عمر کی ہوتی ہیں وہ تو بہت سارے عیبوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی بہو کی چھپا کر اپنے شوہر کے، اپنے بیٹے کے سامنے اچھائیاں بیان کرتی ہیں تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا رہے۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور ہی کرنا پڑتا ہے، محبتاً سمجھانا ہی ہوتا ہے۔ تو اچھا، اسی طرح آپ نے ایک جو توجہ دلائی تھی ایک وہ سوال میں بھی کیا تھا کہ اب اگر ماں باپ اپنے بچوں کی ٹوہ میں لگتے ہیں،
صحیح،
ماں باپ جو بچوں کی ٹوہ میں لگتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں، بعض اوقات اس کا موبائل کبھی چیک کرتے ہیں،
صحیح،
تو یہاں پر بھی کچھ باتوں کا تو ہمیں خیال ضرور کرنا ہوگا۔ دیکھیں ماں باپ اگر بچوں کی اس طور پر کہ ان کو کچھ مشکوک سرگرمیاں بچوں کی نظر آتی ہیں کہ میرا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہ آج کل رات کو جلدی گھر نہیں آتا یا رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو گیا ہو، پہلے تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، اب مسجد میں بھی نہیں جاتا یا قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو اب اس کے لیے اس کے دوستوں سے پوچھ گچھ اگر وہ ہلکی پھلکی کرتے ہیں اور معاملات پر نظر رکھتے ہیں تو بالکل ان کو کرنا چاہیے، کہ ماں باپ اگر بچوں پر اس طرح نظر رکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا اور ان کی اصلاح کر سکیں گے۔ لیکن اس میں بھی اتنی شدت نہ کریں کہ وہ بچہ ہٹ دھرم ہو جائے، جس طرح آپ نے توجہ دلائی کہ وہ بیٹا کہ پہلے تو میں ایسا نہیں تھا لیکن آپ اتنا اپنے میرے دوستوں میں مجھے ذلیل کر دیا، اب میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، تو آپ پھر ماں باپ سر پکڑ کر بیٹھ لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی حکمت عملی کے ساتھ جو جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس پر رہنمائی لے سکتے ہیں، بلکہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت میں کسی مفتی صاحب سے عالم دین کے پاس جائیں اور ان کے پاس جائیں کہ جو خاص طور پر شادی شدہ بھی ہوں، کیونکہ شادی شدہ عموماً اگر صاحب علم ہوتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کو اس معاملے میں زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جا کر اپنے معاملہ ڈسکس کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جس طرح آپ کی وہ رہنمائی کریں گے، آپ کی اس پر عمل کریں گے، تو آپ کا گھر بھی انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنے گا۔
کیا بات ہے! میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کاروباری معاملات میں بھی لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے یا میرا کاروبار چل پڑے، یہ بھی حسد ہی کی ایک آئے گا معاملات میں، تو اب ان کے ایسے معاملات تلاش کرنا، پھر لوگوں کو بتانا ہمیں کیا ضرورت پڑی، ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ اللہ دے گا ہی ہے۔ اسی طرح کسی نے ہم سے پوچھا کسی کا رشتہ ہے یا کوئی کاروبار ہے یا پارٹنرشپ، پوچھا تو ہم نے بتایا، اور ایک خام خواہ لوگوں کی تفتیش تشویش میں لگ کر اور لوگوں کے معاملات کو خراب کرنا، تو کہیں ایسا تو نہیں حسد کینہ وہی والی بات ہے کہ باطنی امراض، کہ میں نے اس کا گھر خراب کرنا ہے، میں نے اس کا گھر برباد کرنا ہے، میں نے اس کا کاروبار تباہ کرنا ہے، حسد میں اتنے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، بغض کینہ اور ایسی دشمنی پال لیتے ہیں کہ گناہوں کے ایسے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، وہ تو کیا برباد ہوگا نہیں ہوگا، ہم اپنی خود دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اچھا کریں اور پازیٹیو سوچ رکھیں، کیونکہ ایک سبب یہ بھی لکھا ہے تجسس میں رہنے والوں کے لیے کہ یہ نیگیٹو تھنکنگ والے ہوتے ہیں، منفی سوچ والے ہوتے ہیں، یہ مثبت سوچ آتی ہی نہیں ہے، جس کے لیے دیکھیں منفی بات، جس کے لیے دیکھیں منفی بات۔ آج کل تو حضور وہ ڈیجیٹل میڈیا، تو لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے سٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا کوئی خراب چیز لگتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک ہے مقصد وہ، لیکن ان پر بھی کچھ حیرت تو ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ دنیا بھر کے سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، بھائی اپنے جو کام ہے وہی
جھگڑا۔ ایک سر میرے یاد آیا، کسی کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا، وہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے، کس طرح جھگڑا کرتے تھے؟ جھگڑا کرتے تھے سٹیٹس کے ساتھ۔
اچھا یوں؟
جی،
پوری دنیا کو سب بتا کر؟
نہیں پوری دنیا تو نہیں، اب سٹیٹس میں بھی کچھ اس طرح کا آ چکا ہے کہ آپ جس کو دکھانا چاہتے ہیں نا اسی کو کر دے تو اسی کو نظر آئے گا۔
اچھا اچھا،
یعنی وہ اس طرح ہی ہوتا تھا کہ ایک وہ تھے گھر والے تو وہ دوسروں کو دکھانا تھا کہ آپ کے بارے میں ہمارے جذبات یہ ہیں، الٹی سیدھی کوئی چیز لگا دی اور صرف اسی کو نظر آئے گا وہ، اب اس نے دیکھا یہ کیا، اب اس نے یہ لگا دی اس کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک دنیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اسٹیٹس پر یا کسی بھی طرح چیز لگاتے اچھی چیز لگائیں جس سے اچھا پیغام اچھا میسج پہنچے، اور نتیجہ تھا نا پھر ایسا جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں تو معاملہ یعنی کہ گھر ٹوٹنے تک چلا گیا تھا، اس طرح مجھے میرے علم میں جو بات آئی، اور وہ اسی طرح کہ اسٹیٹس کی دنیا میں تو سٹیٹس لگایا جاتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، تو اس میں اچھی نیکی کی بات کریں تاکہ کسی کی اصلاح ہو۔
اسے ہی فرما رہے ہیں شاید بھائی، آج کل تو لگتا ہے لوگ اپنے آپ کو چھوڑ کے ساری دنیا کو تلاش کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ نہ جانے کس کس کو سن رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں یہ، और वो फिर सुनकर अजीब जहन मुंतशिर हो जाता है इंसान का, तो ये मुंतशिर ख्याली को जमा कैसे करें? ये
अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी जबरदस्त रहनुमाई फरमाई है कि करने वाले काम करो वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाओ। तो वाकई जो है वो हमें अपनी नेकियों में जो है वो वक्त गुजारना चाहिए। हम अब गौर करें कि इल्मे दीन हमें कितना हासिल है, जो फर्ज उलूम है क्या वो हमने हासिल कर ली है, और जो जरूरी मालूमात हैं इस्लाम की अकायद के बारे में और जो है वो दीगर नमाज रोजे के हवाले से, और जो है वो अगर हज करना है उसके हवाले से ज़कात है, उस इन जो बुनियादी जो है वो मालूमात जो हर मुसलमान को होना चाहिए, बाज़ूकत वो भी जो है वो हासिल नहीं होती। दुनिया भर की मालूमात रख रहे हैं, कौन से मुल्क में क्या हो रहा है, कौन से यानी जो सियासत पर नज़र रखते हैं, कौन सी पार्टी में क्या हो रहा है, यानी देखा जाए तो वो इंटरनेट के ज़रिए हम जो है वो सारी पार्टियों में हैं, सारे मुल्कों में हैं, और जनाब पूरी दुनिया की मालूमात रख रहे हैं। भाई अल्लाह के बंदे अपने जो दीन की बुनियादी मालूमात है वो तो हासिल करो, और अच्छा फिर जो है वो अपने दिल में जरा झांक कर देख लो, और जो है वो अपने जो जरूरी मामलात हैं, जिस जगह जॉब कर रहे हैं, जो टेक्निकल तौर पर आपको चीजें हासिल करनी चाहिए, महारत हासिल होनी चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो मालूमात आपको जिसके पेपर्स देने हैं वो सब उसमें सब में कमजोर हैं, यानी जो जो चीजें लाजमी हैं दुनिया के लिए या आखिरत के लिए वो हमें हासिल नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, और जो चीजें हमें हासिल नहीं करनी चाहिए, तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उसमें जो है तवज्जो दिए जा रहे हैं। तो ये हमें खुद फैसला करना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। उसी में से ये तजस्सुस भी है कि जाहिर है कि जब हम अपने जो है वो इस्लाम में नहीं पढ़ेंगे, दूसरों के ऐप ढूंढने की कोशिश में लगे रहेंगे, तो हमारा जो वक्त अपनी इस्लाह की तरफ और दीगर अपने कामों में सरफ होना चाहिए था वो तो उस तरफ सरफ हो गया, सारी तवज्जो उस तरफ चली गई। जैसे ही उठे अब जो है वो ज़हनी तौर पर हम बिल्कुल अटेंशन है, अब वो काम करना चाहिए जो हम पर लाजिम है, वो करने के बजाय जो है वो हमने सुबह सुबह ही जो है वो दूसरों के जो है जैसे ही फोन खोला, और फोन तो फिर ऐसा है कि जिसमें सब स्टेटस भी हैं, तो जनाब व्हाट्सएप भी हैं, तो सभी जो है वो इंटरनेट पर जो है वो अपनी चीज जो है वो सर्च करने के लिए डाली, तो अपनी चीज के साथ साथ जो है वो 10 ऐसी गैर जरूरी चीजें भी आ गई, तो अब उसमें जो है वो लगे और सारा वक्त तो जाया कर दिया। तो लिहाजा जो है वो हम अपनी जो इस्लाह है उसकी तरफ लगे रहेंगे तो फिर तयस्सुस से ही बच जाएंगे।
क्या बात है सुभान। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, करने वाले काम करें वरना ना करने वाले कामों में लगा दिए जाएंगे, लग जाएंगे, दुनिया भी बर्बाद होती है फजूलियात में, लगवियात में, गुनाहों में बंदा पड़ जाता है, यूं ही आगे बढ़ता रहता है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
आफियत दे मेरे मौला।